Surgióme. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्राकृतिक आपदाएं, सतर्कता और सुरक्षा के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
कल की घटना, धराली की घटना से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जानमाल की क्षति हुई। सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई, एक ओर सेना के जवान, दूसरी ओर राज्य सरकार के कर्मी तुरंत पहुंच गए और आपदा को संभालने के लिए जी जान से लगातार प्रयास चल रहा है। श्रोताओं, मौसम विपरीत है लेकिन हमारा हौसला बुलंद है और हमारे सभी प्रशासनिक सैन्य कर्मी और अन्य सहयोगी दल यथासंभव जान की क्षति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास धराली में, उत्तरकाशी के इस गांव में, सुंदर से गांव में, वहां लगातार बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन ऐसी आपदाओं से हम कैसे बच सकें? प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो आपदा की तरह आएं या अवसर की तरह आएंगी, लेकिन हम कैसे इनमें अपने को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए क्या एहतियाती उपाय हो सकते हैं, वह समझने के लिए इस कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे। और हमने आमंत्रित किया है पर्यावरण क्षेत्र के जाने माने हस्ताक्षर आनंद शर्मा जी को। आनंद शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले तो आनंद जी, हम यही समझना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है धराली की, दुखद घटना हुई है, उसका आकलन आप किस रूप में कर रहे हैं?
बारिश के जो आंकड़े मिले हैं, अभी मेरी मौसम विभाग जो देहरादून है, जहां मैं पहले 15 साल काम भी कर चुका हूं, उनसे जो बात हुई, और हमारा जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा हुआ है हर्षिल में, जो जहां पे वहां पर भी डैमेज हुआ है, तो वो बिल्कुल सटा हुआ है, एरियल डिस्टेंस मात्र कुछ भी नहीं है
जी।
तो उसमें कोई ज्यादा रेनफॉल नहीं आई है कि ऐसी कोई इंडिकेशन देगी कि क्लाउड बस्ट हुआ है। मगर जो आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें तो बहुत जबरदस्त पानी आ रहा है पीछे से, और उसी को देखते हुए लोगों ने इसका आकलन किया कि भाई ये क्लाउड बस्ट है। मगर मेरा ये मानना है कि ये फ्लैश फ्लड तो 100% है, क्योंकि बहुत त्वरित चुटकी में इतना सारा पानी आता है और वो बिल्कुल जो आसपास की बसावट है उसमें इतना सारा पानी, फ्लैश फ्लड जो आया उसने आसपास के जितने भी क्षेत्र है उसको डिस्ट्रॉय कर। अक्सर ये माना जाता है कि इस तरह के जो फ्लैश फ्लड होते हैं या तो वो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल के कारण होते हैं कि बहुत सारी वर्षा थोड़े से क्षेत्र में बहुत कम समय में हो जाए, और कुछ लोग उसको यदि 10 सेंटीमीटर पर आवर यानी एक घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो कुछ उसको क्लाउड बस भी कहा जाता है। तो लोगों का ये ज्यादातर सबने यही शुरू से बात की भाई ये क्लाउड बस था। अब जो डेटा दिखा रहा है वहां का मौसम विभाग का, वो डेटा में तो क्लाउड बस का सिग्नल नहीं आ रहा है
जी।
ये भी सामने दिख रहा है कि बहुत जबरदस्त डैमेजेस हुई है, और ये भी दिख रहा है कि जो घर आप देखेंगे ज्यादातर वो नए घर बने हुए हैं, उनकी छतें देखेंगे जो आपको टीवी में दिखाई दे रही हैं, एकदम फ्रेश पेंटेड हैं, हाल ही में बनाई गई, और ये भी दिख रहा है कि वो फ्लड प्लेन है, नाले का जो फ्लड प्लेन है उसके अंदर बने हुए हैं
जी, जी।
तो मेरा ये मानना थोड़ा ये है कि चूंकि और नदी और ये नाले होते हैं अक्सर अपना रास्ता भी बदलते हैं
जी, जी।
और कभी कभी रौद्र रूप भी धारण करते हैं डिपेंडिंग अपॉन मौसम। तो कुछ ऐसा ही हुआ और नेचुरली जो मकान वगैरह उसकी चपेट में आए, और आप देख रहे हैं जैसे वो पूरा जो फ्लैश फ्लड आ रहा है, और वो शायद पहले थोड़ा और आगे तक जाके फिर टर्न लेके लेफ्ट की ओर जाता था, फिर कुछ सालों से ऐसा नहीं हो रहा था शायद, और थोड़ा सा पहले से ही टर्न कर जा रहा था जो अपनी मेन धारा दिखाई दे रही थी आपको
जी, जी।
और आपने अभी देखा वो जैसे वो मूवमेंट हो रही है वो आगे तक चला गया, और वो शायद काफी सालों से पानी नहीं आया था, तो लोगों ने शायद लगता है वहां कंस्ट्रक्शन कर लिया और डैमेजेस हो गए।
धराली गांव में राहत और बचाव कार्य तेज गति से चल रहा है ताकि जो भी मलबे के अंदर फंसा हुआ है उसे हम सही सलामत बाहर निकाल सके। आइए हम सुनते हैं हमारी देहरादून संवाददाता की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धरशाली क्षेत्र में खीरगंगा नदी में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस प्राकृतिक आपदा में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयां और आश्रय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की है। भटवाड़ी क्षेत्र में सड़कों के टूटने से यातायात बाधित हुआ है, और उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पर हुए भूस्खलन के बाद सड़कों को खोलने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत और बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान में आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें मौसम भी एक बड़ी चुनौती है। सेना के लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सेना के लोग वहां बढ़ चढ़कर आईटीबीपी, बीआरओ और एनडीआरएफ और हमारे राज्य की एसटीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं।
दूसरी तरफ एनडीआरएफ के उप महानिदेशक मोहिन शहीदी ने बताया है कि करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आकाशवाणी के लिए साक्षी सिंह, देहरादून।
आनंद शर्मा जी, ऐसे जल प्रलय से और ऐसे जो स्थितियां हैं उसमें बचाव के क्या साधन हो सकते हैं हमारे पास?
ये ध्यान रख लें कि भारी वर्षा, बहुत भारी वर्षा और कभी कभी अत्यधिक भारी वर्षा खासकर मानसून सीजन में हिमालय क्षेत्रों में आती है और होती है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो या सिक्किम हो, और फ्लैश फ्लड भी आते हैं, भूस्खलन, लैंडस्लाइड भी होता है। अब सवाल यह है कि यदि ये जो मौसम से ज्यादातर ये जो जितने भी आपदाएं हैं ये मौसम से रिलेटेड है, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होगी तो उससे चलते जो है आपका भूस्खलन भी होगा, फ्लैश फ्लड भी होगा और नीचे बाढ़ भी आएगी, यदि हम उसका पूर्वानुमान अर्ली वार्निंग सही समय पे कर दें, यानी टाइमली, यदि कोई इवेंट होने जा रहा है उससे पहले ही उसका सूचना दे दी जाए, उसकी चेतावनी दे दी जाए उसके बारे में, और वो उस चेतावनी को हम आखिरी इंसान या हम कहें जैसे पहले कहते थे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उससे भी इंपॉर्टेंट है क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, वो एक जैसे अब इधर बात करें तो हर्षिल से लेकर धराली तक का जो है मैं इसको क्रूशल माइल कहूंगा, तो उस क्रूशल माइल को पहुंचानी है, और यदि वो करने में हम सक्षम हैं या हम कर पाते हैं तो हम जो खतरा है उसको आपदा में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, तो इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बड़ा जरूरी है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम के संबंध की हमें बड़ी अच्छी जरूरत यह है कि इसके चार कंपोनेंट होते हैं और ये चारों को एक ही फ्रीक्वेंसी पे होना है। रिस्क एनालिसिस, क्या हमने रिस्क एनालिसिस किए कि कौन सा एरिया बहुत खतरनाक एरिया में बसावट है, कौन सा कम है, कौन सा बहुत ही कम है, तो जहां सबसे ज्यादा खतरा है तो फोकस हमारा वहां होना चाहिए
जी,
और उसको चिन्हित होना चाहिए, उसकी मैपिंग होनी चाहिए। तो रिस्क मैपिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, जो कि मौसम विभाग करता है। ये आइसोलेटेड इवेंट इस जगह पे हुआ तो ऐसे इवेंट को पकड़ आप 2-3 दिन पहले नहीं बता सकते हैं। हालांकि IMD देहरादून ने उसके लिए भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी लगाई थी, रेड अलर्ट लगाया हुआ था, और उस एरियाज के थोड़े चिन्हित भी किया था कि यहाँ पर भी अच्छी खासी, खासकर जहां हुआ है वहां तो येलो अलर्ट लगाया था उन्होंने, पर ओवरऑल रेड अलर्ट था उत्तराखंड के लिए। फ्लैश फ्लड होते हैं, फ्लैश फ्लड ध्यान रख लीजिए जैसे टॉर्नेडो होता है जो US वगैरह में आता है, उसके लिए मात्र 15 या 20 मिनट मिलते हैं चेतावनी देने के लिए आप
जी,
तो समय बहुत कम होता है, फिर आप उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और जिसको कम्युनिकेट करेंगे वो उस समय वो टीवी या रेडियो या अखबार तो छोड़ दीजिए, रेडियो और अखबार सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है उस समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये करना बहुत ही मुश्किल काम है, और वही हुआ है, इतनी फास्ट हुआ ये सब कुछ, ये समय नहीं दे पाया। तो एक तो ये हो गया कि हम चेतावनी तंत्र को हमने और सुदृढ़ बनाना है, सबसे बड़ी बात है, अर्ली वार्निंग को और स्ट्रांग बनाना है। आपको बेहतर मेसो स्केल मॉडल, वैली, हर वैली का जो आप देखेंगे लैंडस्केप है, उसका ओरोग्राफी है वो डिफरेंट है, तो उसकी ओरोग्राफी को देखते हुए एक वैली बेस्ड मेसो स्केल मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे, जो कि वहां की लोकल आपको नाउकास्ट दे सके अगले 1-2 घंटे में, जिसमें मेसो स्केल मॉडल भी होगा, रडार भी होगा, सैटेलाइट भी जाए, और उसके साथ साथ ही हम उसका ऑटोमेशन कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ऑटोमेशन हो जाएगा, ऑटोमेशन हो गया तो मतलब कोई टाइमली कोई इंसान का आने की जरूरत ही नहीं, फटाफट एकदम, और डिसेमिनेशन हो जाएगा कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल वगैरह के साथ, वो जरूर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बसावट हटानी पड़ेगी संवेदनशील एरिया से, लोगों को जहां बस गए उनको हटाना चाहिए, क्योंकि 2013 में भी जब केदारनाथ का आपदा आई थी उस समय भी ये क्षेत्र प्रभावित हुआ था। पुराने उससे आपदाओं से सीखना होगा कि कुछ चीजें रिपीट होती हैं, कुछ 10 साल के बाद रिपीट होती हैं, कोई 50, कोई 100 साल बाद, तो मगर कई बार ये जैसा सोचता, लोगों का सोचा था 2013 में हुआ इसके बाद शायद 100 साल बाद होगा, पर ऐसा नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा ये 2-3 पहलू ध्यान रखने पड़ेंगे, और ये बार बार मैं कहूंगा, ऑलवेज फैक्टर वेदर वार्निंग्स इनटू योर डे टू डे प्लानिंग एंड बी वेदर वाइज एंड क्लाइमेट स्मार्ट।
यहाँ पर थोड़ा हम और विस्तार से समझना चाहेंगे कि एक तो कह लें कि प्रशासन के स्तर पर ये सारी चीजें प्रशासनिक स्तर की हुई, लेकिन आम नागरिक के स्तर पर चेतावनी प्रणाली हम किस तरह विकसित कर सकते हैं, जिसमें जहाँ के जो संवेदनशील क्षेत्र के लोग हैं वह स्वतः कोई ऐसी प्रणाली विकसित कर सके जिसमें मौसम को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर एक योजना बन सके, उस दिशा में क्या सुझाव?
बहुत बढ़िया, इसमें मैंने बहुत पहले कहा था कि हमारे पहाड़ों में कम्युनिकेशन इज ए बिग इशू। वार्निंग तो इशू कर दी, अब वो वेदर खराब है तो बिजली नहीं है वहां पर, अब बिजली नहीं तो आपका टेलीविजन नहीं चल रहा है, अखबार तो पहुंचता ही 1-2 दिन बाद ही है, रेडियो भी आपने देखा कि रेडियो भी नहीं चल रहा है, अच्छा बैटरी देखी आपने तो 1-2 साल पुरानी थी वो भी काम नहीं कर रही है।
बिल्कुल,
तो इसके लिए मैंने सजेस्ट किया है कम्युनिटी रेडियो, और रेडियो भी आजकल ऐसे रेडियो आ गए हैं जिसमें आपके पास हैंडल लगा है पीछे, आप 60 बार घुमाइए 1 घंटे चलेगा, सो नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, नो बैटरीज रिक्वायर्ड। तो ऐसे रेडियो सबको विस्तृत करने चाहिए, सबको दिए जाए, सबके पास रेडियो होंगे और उसका सिग्नल भी नहीं पड़ता है, तो एक तो वो हो गया। यदि इस तरह के होएगा तो कम्युनिकेशन आपका दुरुस्त हो गया, उसमें वार्निंग। और सबसे मजी बात है ये कम्युनिटी रेडियो है, लोकल ही उसको चलाते हैं, तो उनके पास ये एक जानकारी पहुंच जाए तो वो तुरंत उसको अपने क्षेत्र में फैला देंगे। सबसे बड़ी है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है कम्युनिटी रेडियो, उसको नेटवर्क को सुदृढ़ करना। और मैंने बहुत इसका प्रचार प्रसार किया उत्तराखंड में और काफी खुल भी चुके हैं वहां पर, मगर उसको ऑलमोस्ट हर ब्लॉक में हमें चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छी चीज होगी। और दूसरी बात है कि समय समय पर जैसे मैं करता था स्कूल में कॉलेजेस में, वहां पर किसानों के साथ विलेज लेवल वर्कर के साथ मिलकर उनके अवेयरनेस कैंपेन करता था मैं, उनको मैं बताता था कि भी गुड वेदर कोट एंड बैड वेदर कोट, यदि अच्छा मौसम है तो आप क्या करें उस समय, पानी का हार्वेस्ट कर लें उस समय, और बैड वेदर है उसके नुकसान से कैसे बचना है, पानी की निकासी का ध्यान रखें, टेम्परेचर बहुत लो जा रहा है तो कैसे कपड़े पहने, तो वो सब चीजें उनके लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। तो ये चीजें इस तरह की जब अवेयरनेस करते हैं तो उनको बेसिकली ये बताया जा रहा है भी आप मौसम की जानकारी सुनिए, और वो भी आधिकारिक सोर्स से, जो मौसम विभाग में जो सरकार का विभाग है उससे लीजिए जानकारी, और उस जानकारी कुछ भी आप पहाड़ों में ऊंचे पहाड़ में कहीं जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं तो उसकी जरूर जानकारी लेके निकले, मौसम की जानकारी, और उसको अपनी प्लानिंग में जरूर लेके आए। और दूसरी बात, नदी नाले खालों में ऐसे मौसम में दूर रहे वहां से, तो ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस ये रखते हैं और अवेयरनेस में, और ये आपको हर रोज करना है। पहाड़ी क्षेत्र में मौसम बहुत तेज बदलता है, और खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहाड़ में आफ्टरनून में एकदम संवेदनशील हो जाता है, तो उसमें ज्यादा ध्यान देना है।
यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि जब से कह लें चार धाम की यात्राएं बड़े पैमाने पर शुरू हुई हैं, उसके बाद से क्या परिवर्तन आया है, और चार धाम की यात्रा पर जाने वालों के लिए, और खासतौर से इस मॉनसून के सीजन में जो यात्रा पर जा रहे हैं या स्थानीय नागरिक हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
दो तीन सलाह है, एक तो जनता के लिए और एक सरकार के लिए भी। जनता के लिए यह है कि आप कोई गुजरात से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कर्नाटक केरला से आ रहा है, उन लोगों को आइडिया नहीं है कि 3500 मीटर क्या मतलब है हाइट का, उस हाइट पे कितना टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मली वहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री होगा या 8 डिग्री होगा, और यदि बारिश हो जाए उस समय तो वो माइनस चला जाता है। अच्छा, कई बार ये देखते भी हैं तो क्लाइमेट देख के चलते हैं, हमें वेदर फोरकास्ट लेके चलना है, क्लाइमेट एवरेज चीज बताता है
बिल्कुल,
और वेदर फोरकास्ट देता है कि अब क्या होने वाला है, और टेम्परेचर 8 डिग्री से -2 या -3 चला जाए, और वो लोग आ जाते हैं हाफ शर्ट पहन के चप्पल पहनकर, उसके बाद छाता नहीं है, रेनकोट नहीं है। तो इसलिए मेरे सबसे टूरिस्ट से कहना है कि ऑलवेज टेक वेदर फोरकास्ट, कहीं भी आप पहाड़ पे खासकर जा रहे हैं या समुद्र में जा रहे हैं, इसको लेके चलें और अकॉर्डिंगली ड्रेस करें। जूते आपके ऐसे होने चाहिए, कोट होने चाहिए, रेनकोट होने चाहिए, हैट कैप हो, जिससे कि आप सुरक्षित रहें लो टेम्परेचर से, बारिश से भी बच पाए, एक तो ये बात हो गई
जी।
और अपना हेल्थ चेकअप जरूर करें, हार्ट के पेशेंट हैं तो चेकअप करें, आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो ना जाएं, क्योंकि जैसे ही लो टेम्परेचर होगा वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और सरकार को मैं कहूंगा कि जहां जहां से आप पहाड़ की ओर जाते हैं चारधाम के लिए, तो वहां बड़े बड़े आपके पास बोर्ड लग जाए, स्क्रीन्स लग जाए, जिनपे वेदर फोरकास्ट डिफरेंट लेग्स में क्या क्या है, बैरियर्स होने चाहिए कि सरकार जब चाहे तो उसको एकदम रोक देगी, नहीं भाई आप नहीं जाओगे वहाँ भूस्खलन।
यानी यात्रियों की संख्या, वाहनों की संख्या पर जरा आप यानी स्पष्ट कर दें कि उसको लेकर भी,
उसको भी नियंत्रण करना होगा, क्योंकि अभी क्या हो गया, टूरिज्म अब बढ़ गया, अब इतना टूरिज्म आ रहा है कि हम कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड कर चुके हैं, और जब इतने सारे आ जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि आपकी जो पर किलोमीटर में इतनी हाई डेंसिटी हो जाती है ऐसी जगहों पे जो संवेदनशील एरिया है, तो सोच लीजिए उस समय अचानक कुछ दुर्घटना घटती है, बहुत भारी वर्षा हो जाती है, फ्लैश फ्लड आता है, तो डेथ्स भी बहुत ज्यादा होंगी। तो रेगुलेट करने की जरूरत है, शेल्टर्स बनाने की जरूरत है, अल्टरनेट रोड्स बनाने की जरूरत है, उनका सबका टूरिस्ट का, उनकी गाड़ियों का सबका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये चीजें होनी चाहिए, और प्लस जो चीजें पिछली आपदा में जो नुकसान पहुंचे जिन जिन क्षेत्रों में, आप देखेंगे 2013 में वो दोबारा से वहां बसावट हो गई, और शायद ये वाला क्षेत्र 2013 में भी प्रभावित हुआ था, तो वो ध्यान देना पड़ेगा कि, और देखिए पुराने जो ट्रेडिशनल लोग थे वो हमेशा घर जो है पहाड़ के ऊपर बनाते थे, अब चूंकि टूरिज्म आ गया तो हर कोई चाहता है नदी के पास रहो, मेरी कल कल नदी या नाला मेरे कानों में दिखे, मेरी आंखों के सामने दिखे, तो मेरी खिड़की से वो दिखे, होम स्टे और रिजॉर्ट भी वहीं बन रहे हैं, और जब इस तरह की आपदा आती है तो नुकसान बहुत ज्यादा होता है।
यानी सावधानी हमें बरतनी है। हमारे विशेषज्ञ आनंद शर्मा जी ने बड़ी स्पष्टता से आपको सभी तथ्यों की जानकारी दी है। आप सभी श्रोताओं की ओर से आनंद जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्राकृतिक आपदाएं, सतर्कता और सुरक्षा के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।